Iran Radio Podcast.
रूजवेल्ट स्ट्रीट पॉडकास्ट का ये 10वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि 4 नवंबर 1979 को ईरान में छात्र दिवस के अवसर पर आयोजित पहली सार्वजनिक सभा के दौरान इमाम खुमैनी की राह पर चलने वाले छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया था। दूतावास के ज्यादातर कर्मचारियों को छात्रों ने बंधक बना लिया था, लेकिन बंधकों में एक खास व्यक्ति नदारद था, ब्रूस लैंजिन, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी राजदूत, जो राजदूत की अनुपस्थिति में ईरान में अमेरिका के सर्वोच्च राजनयिक अधिकारी थे। लैंजिन अपने दो सहयोगियों राजनीतिक विभाग के प्रमुख विक्टर एल टॉमसेथ और दूतावास के सहायक सुरक्षा अधिकारी माइक हॉलैंड के साथ छात्रों के हमले से ठीक पहले मंत्रालय के राजनीतिक महानिदेशक से मिलने के लिए बाग मिल्ली स्थित ईरानी विदेश मंत्रालय चले गए थे। जैसा कि उन्होंने अपनी किताब येलो रिबन द सीक्रेट जर्नल ऑफ ब्रूस लैंजिन में लिखा था, इस मुलाकात में हम 6 नए अधिकारियों को राजनयिक छूट प्रदान करने पर चर्चा करने वाले थे। वो अधिकारी जो दूतावास में रक्षा संपर्क कार्यालय नामक एक नया संगठन स्थापित करने वाले थे और लंबे समय से चल रहे अमेरिकी सलाहकार संगठन के कर्तव्यों को फिर से शुरू करने वाले थे। लैंजिन को नहीं पता था कि एक घंटे बाद वो दूतावास में फिर कभी वापस नहीं लौट सकेंगे। जैसे ही राजनयिक अपनी लिमोजिन कार में वापस लौटने के लिए बैठे, हॉलैंड ने कांपती हुई आवाज में उन्हें दूतावास पर कब्जे की सूचना दी। मरीन कॉर्प्स के कमांडेंट एलन गोलांसिस्की का एक रेडियो संदेश आया था जिसमें छात्रों के हमले की सूचना दी गई थी। लैंजिन फौरन मंत्रालय की ओर वापस दौड़े। जल्दबाजी में उनका कोट हवा में उड़ रहा था। अगले कुछ घंटों में तीनों राजनयिकों ने बार बार ईरानी अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मेहदी बाजरगान उपलब्ध नहीं थे, विदेश मंत्री इब्राहिम यजदी अभी तक अल्जीरिया की अपनी यात्रा से नहीं लौटे थे, रक्षा मंत्री मुस्तफ़ा चमरान कुर्दिस्तान में थे और पुलिस प्रमुख दूसरे अहम मामलों में व्यस्त थे। विदेश मंत्रालय के राजनीतिक अवर सचिव सैयद कमाल खर्राजी एकमात्र उपलब्ध अधिकारी थे जिनके पुलिस और सेना के साथ समन्वय के प्रयास विफल रहे। इस बीच लैंजिन दूतावास के कर्मचारियों को दूर से ही आदेश दे रहे थे। उन्होंने नौसैनिकों को गोलाबारी न करने और छात्रों को यथासंभव टालने का आदेश दिया था, लेकिन आखिर उन्होंने उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दे दिया। उस शाम जब इब्राहिम यजदी अपनी यात्रा से थके हुए वापस लौटे तो लैंजिन ने गुस्से में विरोध किया। ये राजनयिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। यजदी ने बहुत ही सुकून से उत्तर दिया, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि शाह का अमेरिका में स्वागत करने से जनता का गुस्सा भड़क सकता है। लैंजिन ने पिछले वर्ष दूतावास पर हुए हमले में यजदी के हस्तक्षेप का उल्लेख किया और उनसे इस बार भी हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, लेकिन मंत्री महोदय ने खेद में अपना सिर हिलाते हुए कहा, उस समय परिस्थितियाँ बहुत अलग थीं। 4 नवंबर की आधी रात को तीनों राजनयिकों को मंत्रालय की तीसरी मंजिल पर स्थित विशेष स्वागत कक्ष में ले जाया गया। लैंजिन ने बाद में अपने संस्मरणों में अपने कमरे का वर्णन इस प्रकार किया, शानदार फानूस, बढ़िया लेकिन पुराने फारसी कालीन और बेदाग चमड़े की कुर्सियां, एक आलीशान जेल जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते थे। लैंजिन और उनके सहयोगी विदेश मंत्रालय की इमारत के इस हिस्से से बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन वे बिना किसी प्रतिबंध के अन्य देशों के राजनयिकों से मिल सकते थे और उनके माध्यम से वाशिंगटन से संपर्क कर सकते थे। तेहरान में ब्रिटिश राजदूत जॉन ग्राहम इन संचारों के मुख्य मध्यस्थ थे। ये बात बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट हिल्डा थैचर ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कही थी। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अनुरोध किया कि क्रांतिकारी समिति के सैनिक मंत्रालय में तैनात अमेरिकी राजनयिकों की सुरक्षा करें। इस प्रकार लेंजन थॉमसेट और हॉलैंड ने संकट के पूरे 444 दिन विदेश विभाग की इमारत में एक सुरक्षित निवास में बिताए। दोपहर के 2 बज रहे थे और टीवी चैनल 1 पर राष्ट्रीय समाचार हर दिन की तरह उसी परिचित संगीत और सामान्य तस्वीरों के साथ प्रसारित हो रहा था। लेकिन शुरुआती लम्हों में जो खबर प्रसारित हुई वो इतनी अप्रत्याशित थी कि देश भर में आग की तरह फैल गई। न्यूज एंकर ने दृढ़ स्वर और लहजे में घोषणा की, कुछ मिनट पहले तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर छात्रों ने कब्जा कर लिया। अमेरिकी दूतावास की इमारत की तस्वीरें, जिस पर अब छात्रों के एक समूह का कब्जा था, स्क्रीन पर प्रसारित हो रही थी। रिपोर्टर ने इस ऐतिहासिक घटना की विस्तार से रिपोर्ट पेश की। दूतावास के लाउडस्पीकरों से छात्रों की आवाजें सुनी जा सकती थी, जो जोशीले अंदाज में अपना बयान पढ़ रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने अपने विरोध की आवाज दुनिया के कानों तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया है। हंगामे के बीच छात्रों ने दूतावास पर कब्जा करने के 4 मुख्य कारण गिनाए। पहला, अमेरिका द्वारा पूर्व शाह को शरण दिया जाना, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि शाह के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हैं। दूसरा, अमेरिका का दुष्प्रचार और क्रांतिकारी समूहों का खुला विरोध। तीसरा, ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिका का गुप्त और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। और चौथा, क्षेत्र में अमेरिका की विनाशकारी भूमिका का विरोध, जो उनके अनुसार उत्पीड़ित राष्ट्रों को साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त होने से रोक रही है। कुछ घंटों बाद दूतावास के अंदर का माहौल अभूतपूर्व दृश्य पेश कर रहा था। छात्र दूतावास के एक बड़े हॉल में देशी विदेशी पत्रकारों के कैमरों के सामने खड़े थे। एक दृढ़ चेहरे और गूंजती आवाज वाले उनके प्रवक्ता ने ऐलान किया कि ये समूह किसी भी पार्टी या गुट से संबंध नहीं है और सिर्फ इमाम खुमैनी के विचारों से प्रेरित है। उन्होंने कुर्दिस्तान और खुर्रम शहर के बारे में दस्तावेजों की खोज की भी घोषणा की, लेकिन कहा कि आने वाले दिनों में और विवरण सामने आएंगे। यहीं पर पहली बार इमाम के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुस्लिम छात्र नाम का उल्लेख किया गया था। इस बीच दूतावास भवन के परिसर में कुछ और ही दृश्य सामने आ रहे थे। छात्रों ने दूतावास के हॉस्टल में मिली चादरों और कपड़ों से दूतावास के कर्मचारियों के हाथ बांध दिए थे और आंखों पर पट्टियां बांध दी थी, ताकि वो कोई प्रतिरोध ना कर सके। उन्होंने बंधकों को 2 समूहों में बांट दिया। अमेरिकी कर्मचारी, जिन्हें राजदूत और प्रभारी राजदूत के आवास पर ले जाया गया, और स्थानीय दूतावास के कर्मचारी, जिन्हें बाहर ले जाया गया। बंधकों से पूछताछ शुरू हुई। छात्रों ने हर व्यक्ति से उसका नाम, पद और पृष्ठभूमि पूछी। उनके 3 लक्ष्य थे। पहला, दूतावास के प्रशासनिक मामलों में कार्यरत गैर अमेरिकी कर्मचारियों की पहचान करना और उन्हें रिहा करना। दूसरा, क्रांतिकारी अभियानों के खिलाफ भूमिका निभाने वाले संदिग्ध वरिष्ठ CIA अधिकारियों का पता लगाना। और तीसरा, होशियारी से बंधकों को अलग अलग कमरों में बांटना। बंधकों को बांटने का उनका एक मानदंड था, जो भागने की योजना बना सकते थे और जो उन्हें अंजाम दे सकते थे। उन्हें एक ही कमरे में नहीं रखा जाना चाहिए। छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण था कि CIA स्टेशन के कर्मचारी, सिक्योरिटी अताशे और राजनीतिक अधिकारी जैसे एजेंट, जिनके पास उच्च खुफिया जानकारी थी और जो भागने की योजना बना सकते थे, उन्हें उन एजेंटों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए जो उन्हें अंजाम दे सकते थे, जैसे कि मरीन। छात्रों द्वारा सभी अमेरिकी बंधकों की प्रारंभिक प्रोफाइल प्राप्त करने के बाद गैर अमेरिकी कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया। 60 अमेरिकी बंधकों को कई लोगों के छोटे समूहों में अलग अलग कमरों में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ईरानी विदेश मंत्रालय में मौजूद 3 उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया और अगले दिन 3 और लोग कैथरीन केट कूब विलियम रॉयर और लिलियन जॉनसन को ईरान अमेरिका फोरम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह जो घटना एक संक्षिप्त समाचार के साथ शुरू हुई थी वो एक अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल गई, जिसने दुनिया का ध्यान तेहरान पर केंद्रित कर दिया। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने के बाद के दिनों में पूरे ईरान में समर्थन की लहर दौड़ गई। सड़कों पर, मस्जिदों और विश्वविद्यालयों में, मजदूर वर्ग के परिवेश और बाजारों में विभिन्न समूहों के लोग इकट्ठा हुए और अपने नारों और बयानों से छात्र आंदोलन का बचाव किया। अखबारों ने जोरदार सुर्खियां छापी और रेडियो और टेलीविजन पर विश्लेषकों ने इस कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया। बुद्धिजीवियों और कलाकारों में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आधिकारिक बयान जारी करके इस कार्रवाई को अमेरिकी हस्तक्षेप की एक जरूरी प्रतिक्रिया माना। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के स्वतंत्रता आंदोलन ने भी, जिसके महासचिव ने दूतावास पर कब्जा करने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, 4 नवंबर की कार्रवाई के समर्थन में एक बयान जारी किया। स्वतंत्रता आंदोलन के बयान में कहा गया था, अमेरिकी दूतावास पर कब्जा अमेरिकी नीति के खिलाफ एक साधारण विरोध नहीं है, ये उस रास्ते और औपचारिकता के खिलाफ विरोध है जिस पर हिंसक अमेरिकी उपनिवेशवाद दुनिया भर में चल रहा है। लेकिन इस समर्थन की पराकाष्ठा 5 नवंबर को इमाम खुमैनी के ऐतिहासिक भाषण के रूप में सामने आई। खुम के फैजिए मदरसे में क्रांतिकारी नेता की आवाज सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी। इमाम खुमैनी ने अपने चिरपरिचित शांत और निर्णायक लहजे में नहजुल बलागा में दिए गए एक उपदेश का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान बताया और इस बात पर जोर दिया कि दूतावास पर कब्जा कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि इस्लामी क्रांति के खिलाफ इस देश की अंतहीन साजिशों का एक जरूरी जवाब था। उस दिन इमाम खुमैनी का भाषण दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश था, अगर अमेरिका मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान को नहीं सौंपेगा तो पहले से भी बड़ी क्रांति होगी। ये वाक्य कोई धमकी नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी थी, यानी ईरानी जनता विदेशी निर्भरता और प्रभुत्व के युग की वापसी नहीं होने देगी। कुछ दिनों बाद अमेरिकी नेटवर्क CBS के एक रिपोर्टर ने इमाम खुमैनी का इंटरव्यू लेने में कामयाबी हासिल कर ली। इस इंटरव्यू में इमाम खुमैनी ने स्पष्ट रूप से बताया कि ईरान अमेरिका समेत सभी देशों के साथ शांति चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने के बजाय अमेरिका ने तेहरान स्थित अपने दूतावास को जासूसी का अड्डा बना दिया है। जब रिपोर्टर ने पूछा, आयतुल्ला, अगर आपको इतना यकीन था कि अमेरिकी दूतावास जासूसी का अड्डा है तो आपने दूतावास को बंद क्यों नहीं किया, आपने अमेरिका से संबंध क्यों नहीं तोड़ लिए? उन्होंने जवाब दिया कि हमने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिकी दूतावास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विपरीत साजिश का केंद्र बन जाएगा, लेकिन दस्तावेजों की जब्ती और खोज के बाद ये साबित हो गया है। दूतावास पर कब्जे का समर्थन सिर्फ बयानों और भाषणों तक ही सीमित नहीं रहा। ईरानी सिनेमा मालिक संघ ने सिनेमाघरों में अमेरिकी फिल्में दिखाना बंद कर दिया। स्टेडियमों में फुटबॉल मैच देखने वाले दर्शकों ने अमेरिका के खिलाफ नारे लगाकर छात्रों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। बाजारों में व्यापारियों ने छात्रों के समर्थन में चंदा इकट्ठा किया। ये व्यापक समर्थन सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, 19 अगस्त 1953 के तख्ता पलट के जख्म और मुसद्दिक सरकार को उखाड़ फेंकने में अमेरिका की भूमिका अभी भी ताज़ा थी और ईरानी इस घटना को भूले नहीं थे। कई लोग चिंतित थे कि इतिहास खुद को दोहराएगा और इस बार अमेरिका घरेलू एजेंटों की मदद से क्रांति की उपलब्धियों को नष्ट कर देगा। इस वजह से दूतावास पर कब्जा करना कई ईरानियों द्वारा एक निवारक और रक्षात्मक कदम माना गया। जब अमेरिकी दूतावास से मिलने वाले दस्तावेज धीरे धीरे जारी किए गए तो इन चिंताओं की वैधता और भी स्पष्ट हो गई। पत्रों, गोपनीय रिपोर्टों और क्रांति विरोधी समूहों के साथ संवाद की योजनाओं से पता चला कि तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास वास्तव में विध्वंसक अभियानों की योजना बनाने का केंद्र बन गया था। ये दस्तावेज ऐसे थे कि कुछ विदेशी विश्लेषक भी उस समय अमेरिका की विनाशकारी भूमिका से इनकार नहीं कर सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये दस्तावेज तब प्राप्त हुए थे जब अमेरिकियों ने 2 घंटे तक सभी गोपनीय दस्तावेजों को नष्ट किया था, लेकिन जो कुछ बचा था उससे ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप साफ दिखाई देता था। इस तरह छात्रों के एक समूह द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गया। एक ऐसा आंदोलन जिसने न सिर्फ क्रांतिकारी नेता का समर्थन प्राप्त किया, बल्कि उन लाखों ईरानियों के दिलों में भी एक खास जगह बना ली जो छिपी हुई साजिशों से अनजान थे।